So today is a very auspicious day of Lord Nityanand Prabhu's appearance day. Hari Bol! And it has become even more auspicious with the presence of His Holiness Bhakti Prahlad Bhagwat Swami Maharaj. Hari Bol! We are extremely thankful to Maharaj for being here on this most wonderful day and giving His wonderful association. Maharaj, we all know, is a pioneer in spreading Krishna consciousness all over the world. And Maharaj specially stresses on education and training. He has pioneered the project of PACE and LEADS program. Maharaj travels all over the world, and especially he is developing a community in Mauritius. So we are extremely thankful that Maharaj has come over here on this very auspicious day. And the credit for this goes to his grace Amogh Lila Prabhu. Actually, Maharaj is conducting a Vaishnava Sadachar course in Dwarka temple, and earlier the Maharaj was scheduled to give lecture on Nityananda Rishi Day in Dwarka temple. So I requested Amogh Lila Prabhu to please come over here. I requested Amogh Lila Prabhu to come on this day and give lecture. He said, no, Maharaj is giving lecture in Dwarka. So I said, why don't you come along with Maharaj? So he is such a broad-minded person, very kind-hearted person. He accepted my request and brought Maharaj here. So the whole credit goes to His Amogh Lila Prabhu. And we also welcome His Grace Shriniket Prabhu for His wonderful kirtan here. And thank you very much, and welcome all of you. Today is a very auspicious day. Let's make best use of Maharaj association. I request you to और बहुत ही ध्यान पूर्वक महाराज के मुख से नित्यानंद प्रभु का गुणगान सुने. हरे कृष्ण
हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद So we shall recite the initial verse that introduces Lord Nityananda within the Sri Chaitanya Charitamrita.
तो अभी हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे जिसमें भगवान नित्यानंद का परिचय दिया गया है चैतन्य चरितामृत में.
This is the very first chapter in the Adi Lila entitled The Spiritual Masters and text number 2.
आदि लीला का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है गुरुवर और श्लोक संख्या 2.
But we shall read text number 1 and then text number 2 together.
लेकिन हम श्लोक संख्या 1 और 2 इकट्ठे पढ़ेंगे.
वंदे गुरु निशाबक्तान येषां येषावतारकान् तत्प्रकाशं चतुः शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञमं संज्ञकम् Translation by Srila Prabhupada. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord, the Lord's incarnations, His plenary portions, His energies, and the primeval Lord Himself, Shri Krishna Chaitanya.
मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ.
So now you can repeat after me. Vande.
Vande.
श्री कृष्ण चैतन्य
श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद
नित्यानंद
सहोदित
सहोदित
गौधर्य
गौधर्य
पुष्पवंत
पुष्पवंत
चित्र
चित्र
सन्द
सन्द
तमोनुद
तमोनुद
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद सहोदित
नित्यानंद सहोदित
गौड Gauradaya Pushpavanto
Gauradaya Pushpavanto
Chitra Sandottamo Nudha
Chitra Sandottamo Nudha
Vimoka
Vande Shri Krishna Chaitanya
Vande Shri Krishna Chaitanya
Nityananda Sahodito
Nityananda Sahodito
चैतन्य को
नित्यानंद
और भगवान नित्यानंद को सह उदितो एक साथ उदय हुए गौड़ उदय गौड़ के पूर्वी क्षितिज पर पुष्पवंतो सूर्य तथा चंद्र दोनों साथ में चित्रो आश्चर्यजनक शब्दो आशीर्वाद देते हुए तमहनुदो अंधकार मिटाने के लिए
ट्रांसलेशन
अनुवाद मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ वे गौर के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं
ओम ज्ञान तथिमेरंदस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां तदाति स्वापदान्तिकं वञ्चकपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Once in Calcutta, Srila Prabhupada asked the devotees the question, what is the duty of the spiritual master and what is the duty of the disciple?
एक बारी कलकत्ता में श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि गुरु का क्या कर्तव्य है और शिष्य का क्या कर्तव्य है
So different devotees gave Srila Prabhupada a different answers. So finally Srila Prabhupada himself gave the principal answer.
तो अंततः श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना उत्तर दिया।
And Srila Prabhupada said that the duty of the spiritual master is to serve Krishna, and the duty of the disciple is to assist the spiritual master in his service to Krishna.
श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि गुरु का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सहायता करना कृष्ण की सेवा में।
And the example is that the spiritual master installs the deity of Radha Krishna.
तो इसका उदाहरण है कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हैं।
And therefore the spiritual master is fully responsible for the worship of Radha Krishna deity.
तो आध्यात्मिक गुरु हैं वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा के लिए।
Not only that, the spiritual master is also responsible for the entire temple complex.
ना केवल ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं, पूरे के पूरे मंदिर परिसर के लिए जिम्मेवार हैं।
Which includes the cleanliness of the temple.
जिसमें कि मंदिर की स्वच्छता भी आती है।
And Srila Prabhupada quoted the verse that we sing every morning. Shri Vigrahara Dana Nityanana Shringaratanman Diramanjanata. That the spiritual master has to clean the temple and the disciple has to assist the spiritual master in cleaning the temple.
So, as in Guru Ashtanga ke teesre shlok mein bataya jata hai ki jo adhyatmik guru hai उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो मंदिर को साफ रखें और शिष्य गुरु की सेवा में उनका सहयोग देते हैं।
So one time Srila Prabhupada was in his quarters, which was upstairs, and he was coming down the stairs into the temple room.
तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी छत पे थे और अपने रूम में नीचे आ रहे थे।
And that was the way to go out to the car, to go out for some preaching engagement.
और फिर उनको बाहर जाना था गाड़ी में बैठ के किसी प्रचार के लिए।
So in the temple room there was only one of his disciples who was a Mataji, and she was down on the floor cleaning, not with the mop but with her hands and with a cloth. Cleaning the floor of the temple room.
तो वहाँ मंदिर के कक्ष में एक माताजी थी जो प्रभुपाद जी की शिष्या थी वो बैठकर मंदिर की सफाई कर रही थी एक कपड़े के साथ।
So this Mataji, while she was cleaning the floor, Srila Prabhupada never ever spoke with her because she was initiated by letter.
तो ये जो माता जी ये मंदिर साफ कर रही थी इससे पहले प्रभुपाद ने उसे कभी बात नहीं की थी। इन माता जी की दीक्षा भी एक पत्र के द्वारा हुई थी।
And then one of the local sannyasis does the fire yagya and gives the name.
और उन दिनों में जब ऐसे पत्र से दीक्षा होती थी तो उसमें जो स्थानीय सन्यासी होते थे वो यज्ञ करके उनको नाम दे देते थे।
So she didn't directly receive initiation from Srila Prabhupada, but received initiation at the same time. At the same time, she never directly spoke a word to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada didn't even speak a word to her.
तो एक तरीके से
this point.
Yeah. तो ये बात देखने की है कि माताजी ने direct रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, वहाँ पत्र के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी। और कभी भी उन्होंने प्रभुपाद से ना तो एक शब्द कहा था और ना ही प्रभुपाद ने उनसे कभी एक शब्द कहा था।
So this time when Srila Prabhupada was coming down, he saw that she was the only one in the temple room cleaning on the floor.
तो
cleaning temple room.
तो जब प्रभुपाद जी ने इस बारी देखा कि पूरे मंदिर में केवल एकमात्र वही माता जी थी और वो कपड़े से मंदिर की सफाई कर रही थी.
So the secretaries and the servant, personal servant of Srila Prabhupada, told Srila Prabhupada, Prabhupada, don't walk that way, it's a bit wet. You know, you walk this way where it's already clean and dry. You know, so that his feet doesn't get wet.
तो प्रभुपाद जी के साथ उनके सेवक थे, उनके सेक्रेटरी थे, तो प्रभुपाद को बताने लगे, प्रभुपाद आप यहाँ से मत जाइए, रास्ता गीला है, आप यहाँ से निकलिए, ये रास्ता सूखा है.
So Srila Prabhupada turned around to his disciple who said that and didn't tell him anything, but gave him such a stiff look as if, who are you to tell me what to do?
तो जिस शिष्य ने ये कहा था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने मुड़ के उसको देखा और बहुत ध्यान से देखा और कुछ कहा नहीं, जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए किस रास्ते पे जाना है.
But the Mataji was cleaning the temple. She had a back towards Srila Prabhupada. She didn't know what was happening.
तो जो माताजी मंदिर की सफाई कर रही थी तो उनके पीठ थी उस तरफ, तो उसको नहीं पता था कि क्या बातचीत हो रही है.
Then Srila Prabhupada walked in that wet area and his disciples was following him. And he turned around and said, wait, you don't follow me.
तो प्रभुपाद जी उसी जो गीला रास्ता था जहाँ माता जी सफाई कर रहे थे उसी दिशा में गए, तो उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे, तो प्रभुपाद जी ने पीछे मुड़ के कहा आप वहीं रुकिए, आपको मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है.
So she was cleaning the floor, but she could feel the spiritual power of Prabhupada, but not looking at him directly. So Prabhupada came to her and he kneeled down, not with his knees. You know how they sit down in India, with their just the feet, they go down. You know, roadside something.
Right. So Mataji came
almost next to her.
So Mataji ki to peeth thi us taraf, to Mataji ko dekh to nahi pa rahi thi. Lekin nischit roop se wo Prabhupada ji ki jo adhyatmik shakti hai, usko anubhav kar rahi thi. तो प्रभुपाद बिल्कुल उसके समीप गए और अपने पांव पर बिल्कुल जमीन पर उसके साथ आके बैठ गए.
And then she realized that Prabhupada was right next to her, but she froze. Froze means she couldn't move.
तो माता जी को लगा कि प्रभुपाद बिल्कुल उनके समीप आके बैठ गए हैं, तो बिल्कुल जैसे एकदम वहीं पर जम गई हो, एकदम फ्रोज हो गई, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाए.
Then Prabhupada spoke in a ear, into her ear, as if giving a mantra.
और प्रभुपाद ने बिल्कुल उसके कान के पास जाके बोला जैसे कि उसको कोई मंत्र दे रहे हो.
And then the disciples saw the transformation of this Mataji. She like completely was, you know, mesmerized and she started crying immediately.
और फिर प्रभुपाद जी के शिष्य ने देखा कि माता जी का चेहरा कैसे बदल गया पूर्ण रूप से, जैसे माता जी जैसे कि कहते हैं पूर्ण रूप से प्रभुपाद की शक्ति आगे द्रवित हो गई और उनके जोर जोर से वो रोने लगे.
So this was a very personal exchange between Srila Prabhupada and the Mataji.
तो ये बहुत व्यक्तिगत बातचीत थी प्रभुपाद और माता जी के बीच में.
And the servant and the secretaries wouldn't dare ask Srila Prabhupada, what did you tell her? They wouldn't do that.
और जो प्रभुपाद जी के सेवक थे और सेक्रेटरी थे, उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्रभुपाद से पूछ ले आपने माता जी को क्या बोला.
So then they went off with Srila Prabhupada, but they had it in their conscience, they want to come back and ask that Mataji, what did Srila Prabhupada tell you?
तो उन्होंने प्रभुपाद से तो नहीं पूछा, वो प्रभुपाद जी के साथ चले गए, लेकिन उनके मन में था कि निश्चित रूप से आके माता जी से पूछेंगे कि प्रभुपाद ने आपसे क्या कहा था.
And by that time the news went around in the community, Prabhupada did this and he told us something personally.
तो धीरे धीरे पूरे समुदाय में खबर फैल गई कि प्रभुपाद बिल्कुल माता जी के पास गए और उनके कान में बहुत ही व्यक्तिगत बात कही है.
And every time they asked what did Prabhupada tell you, and even the secretaries were there for the years, many years even after that, she just tells them, it's personal, private, confidential, none of your business.
So, काफी सालों तक प्रभुपाद जी कई शिष्य माता से पूछते रहे क्या बताया था प्रभुपाद ने, क्या बताया था प्रभुपाद ने. तो माता जी कहती है बिल्कुल व्यक्तिगत है, मेरे लिए है और पूर्ण रूप से गोपनीय है.
So then when I was serving as a co-president in Krishna Balaram Mandir about 17 years ago in the year 2000, she came to Vrindavan for Kartik festival.
तो महाराज बता रहे हैं कि लगभग 17 साल पहले जब सन 2000 में महाराज वृंदावन में सह अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे तो यही माता जी वृंदावन में आई कार्तिक के महीने में.
So it was Prabhupada's disappearance day festival.
ये प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस पे.
So one of my main services is to personally take care of visiting devotees and to ensure that the visit is pleasant and everything that they need, they get, and so forth.
तो महाराज कह रहे मेरी मुख्य सेवा उस समय ये थी कि मैं जो भी बाहर से आए हुए भक्त हैं उनको देखूं कि वो सही ढंग से कंफर्टेबल हैं कि नहीं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं कि नहीं.
So she was very pleased with me, and she wanted to meet me in my office.
तो माता जी महाराज की सेवाओं से बहुत प्रसन्न थी और वो चाहती थी कि महाराज के ऑफिस में आके उनसे मिले.
So she came with her husband to my office. Both are proper disciples.
तो वो माता जी अपने पति के साथ महाराज के ऑफिस में आई और दोनों पति और पत्नी प्रभुपाद जी के शिष्य.
So she said that you know we cannot thank you enough for your hospitality in Vrindavan. I came to Vrindavan after many, many years and I didn't expect to be treated with such kindness and hospitality.
तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि जिस ढंग से अच्छे तरीके से आपने हमारी देखभाल की है. मैं काफी सालों के बाद हम वृंदावन में आए हैं और हम ये अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि हमारा इतनी अच्छी देखभाल की जाएगी, तो उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं.
Then she said, can I do any service for you?
तो माता जी ने कहा कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ क्या?
I said yes, you can tell me if you had any exchanges with Srila Prabhupada and what happened.
तो महाराज ने बोला कि हाँ निश्चित रूप से आप मेरी सेवा कर सकते हैं अगर आप मुझे ये बता दें कि प्रभुपाद से आपकी क्या बातचीत हुई थी.
So I just innocently requested her to say something.
महाराज ने बहुत ही मासूमियत से माता से पूछा कि आप बता दीजिए क्या कहा था प्रभुपाद ने.
Then she started crying. So then the husband asked her, did Prabhu say something wrong? I wasn't saying yes. Why? Then I said, no, please forgive me if I made the wrong request. Why are you crying, you know?
तो जैसे महाराज की बात सुनी तो माता जी ने फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया. तो उनके पति ने बोला क्या कि इन्होंने कुछ इन प्रभु ने कुछ गलत बात की है क्या? और महाराज को भी बुरा लगा. महाराज ने उनसे क्षमा मांग ली कि अगर अब मेरी आप निवेदन में कुछ गड़बड़ है तो मुझे क्षमा करें.
Then she said that there was one and only one exchange with Srila Prabhupada and I didn't speak a word but he spoke to me. And the husband told her, huh? You didn't tell me? I'm your husband?
तो माता जी ने कहा कि मेरे प्रभुपाद से केवल एकमात्र वही बातचीत हुई है और उस बातचीत में केवल उन्होंने ही बोला, मैं तो कुछ बोली नहीं और ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई. जब ये बात उनके पति ने सुनी बोला क्या मुझे भी नहीं बताया अभी तक.
Then husband asked her, who was there, who knows about this? She said, no, they don't know what happened, but Shruti Kirti was there, Rameshwar was there. You know, other devotees, but these two I know, they were there. But they asked me, I never said. But I'm your husband, you're not telling me.
तो उनके पति ने बोला उस समय कौन कौन और थे प्रभात के शिष्य थे तो माता जी ने कहा श्रुत कीर्ति प्रभु थे रामेश्वर थे और भी बहुत से शिष्य थे तो उनके पति ने कहा कि फिर अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मैं तो तुम्हारा पति हूँ
Then she said, well, for the first time now I have to say, because I owe you so much gratitude to Brihadaranyaka Prabhu, that time when he was there. So I have to say. He asked, I have to say.
तो माता जी ने कहा कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया लेकिन आज मैं महाराज का उस समय नाम बृहदमदन प्रभु था तो मैं आज बृहदमदन प्रभु को बताऊंगी क्योंकि मैं इनके प्रति बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ इसलिए आप पहली बार ही बताऊंगे
But she put some conditions. She said that nobody must know that who am I and what's my name, and at the same time, nobody must know what's my husband's name because it will go out. Because I'm about to tell you something that's very dear in my heart, but if I expose it, the intimacy will be lost.
तो माता जी ने बोला ठीक है मैं आपको बताऊंगी प्रभुपाद ने मुझे क्या कहा था लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको ये नहीं बताना कि मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है और मेरे पति का क्या नाम है क्योंकि अगर ये बात सबको मालूम चल जाएगी तो जो मेरी प्रभुपाद के साथ जो आत्मीयता है वो कम हो जाएगी
And then she laid another condition. She said, I'm only telling you in front of my husband. Will you share it with others? I said, yes. I said, why not? I said, if you don't want to tell me, but you tell me, but I'm going to share it with others, but I'll keep you and your husband confidential.
तो उन्होंने फिर दूसरी कंडीशन लगाई कि मैं तो आपको बता दूंगी कि आप दूसरों को बताएंगे तो महाराज ने बोला बिल्कुल बताऊंगा और जरूर बताऊंगा लेकिन मैं आपका और आपके पति का नाम नहीं खोलूंगा वो नहीं बताऊंगा
Since she was relating how Prabhupada came through the, you know, like wet area in the temple room and he kneeled down, you know, on his flat on his feet, not the knees, and he whispered this in my ear.
तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे प्रभुपाद उस क्षेत्र में आए जहाँ उनको पानी पड़ा हुआ था गीला था प्रभुपाद आए बिल्कुल उनके साथ बैठे अपने घुटनों पर नहीं अपने पैरों पर बैठे बिल्कुल माता जी के साथ
And when he whispered these words in my ear, I almost froze and I almost fainted, but I had to keep my composure because if I faint, then Prabhupada won't go and he'll say, okay, you know, help her, you know. So I had to keep my composure so that I don't take service from Prabhupada.
तो बोला जो प्रभुपाद जी मेरे कानों में जो बताया उसको सुन के मैं बिल्कुल जैसे फ्रीज हो गई और जैसे मैं बिल्कुल अपनी चेतना खोने वाली थी लेकिन किसी ढंग से मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि अगर उस समय बेहोश हो जाती तो प्रभुपाद को फिर मेरे जो प्रभुपाद से सेवा लेनी पड़ती प्रभुपाद को कुछ कहना पड़ता किसी को इसको उठाओ
सो प्रभुपाद टोल्ड देम व्हिस्पर्ड इन माय ईयर थैंक यू फॉर क्लीनिंग माय हार्ट
तो माता जी ने बोला कि प्रभुपाद ने मेरे कान में ये कहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हृदय को साफ करने के लिए
She is cleaning temple room and Prabhupada is saying that you are cleaning my heart.
तो हालांकि वो मंदिर को साफ कर रहे थे लेकिन प्रभुपाद ने बोला तुम मेरे हृदय को साफ कर रही हो
So every morning when she goes for Mangal Aarti and when it comes to this verse, Shringara ta mandira manjanado, cleaning the temple room. And she cries. But she doesn't show tears to others, she remembers this.
तो हर सुबह जब वो गुरु अष्टकम में आती है मंगल आरती में तो गुरु अष्टकम सुनती है और जब श्री श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो ये श्लोक सुनती है तो उनको रोना आ जाता है हालांकि अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते लेकिन उनको यही बात याद आ जाती है
So the duty of the spiritual master is to clean the temple and the duty of the disciple is to assist the spiritual master in cleaning the temple
तो आध्यात्मिक गुरु का
complete vijnan about this completely realized
तो आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि मंदिर की सफाई करना और शिष्य का कर्तव्य है गुरु को सहयोग देना इस मंदिर की सफाई में और माता जी को इसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार था.
एंड शी इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट डिसिपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, नॉट वेरी प्रोमिनेंट, बट दैट रिलेशनशिप विद श्रील प्रभुपाद इज वेरी इंटीमेट बिकॉज़ इट इज गुह्यतमम, इट इज कॉन्फिडेंशियल.
हालांकि वो माता जी है कि प्रभुपाद की मुख्य मुख्य शिष्यों में नहीं आती, लेकिन उनका जो प्रभुपाद जी का के साथ जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही आत्मीयता वाला है.
So in this particular verse we read the example of the sun rising over the horizon is significant. But the sun is not rising because the sun eternally exists.
तो इस प्रयाग इस श्लोक में जो उदाहरण दिया गया है कि सूर्य क्षितिज से उदय हो रहा है, लेकिन सूर्य कभी उदय होता नहीं है क्योंकि सूर्य तो हमेशा वहीं रहता है.
So therefore the sun does not take birth.
तो सूर्य का कोई जन्म नहीं होता.
It just appears in front of us in our vision at a certain time which we call sunrise, and it disappears from our vision which we call sunset.
सूर्य तो केवल कुछ हमारी दृष्टि के सामने किसी समय पर प्रकट हो जाता है, उदय हो जाता है, जिसको हम सूर्योदय कहते हैं, और किस समय पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है तो हम उसको सूर्यास्त कहते हैं.
So it doesn't really appear or disappear, but it appears to us to do so.
तो वास्तव में सूर्य प्रकट या अप्रकट नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि के सामने ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ.
In a similar way, Krishna and Balaram are always eternally there.
इसी ढंग से कृष्ण और बलराम शाश्वत रूप से हमेशा हैं.
They have no beginning or end.
उनकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है.
Similarly, Lord Chaitanya and Lord Nityananda has spoken in this verse, have no beginning and end.
इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, उनका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है.
But to our limited vision, they appear simultaneously, like the appearance of the sun and moon, to bestow blessings and benediction to all.
लेकिन हमारे सीमित दृष्टि के सामने ऐसा लगता है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ है हम सबके ऊपर आशीर्वाद और देने के लिए.
So we should also know and understand why Lord Nityananda appeared.
और हमको ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए कि नित्यानंद भगवान क्यों प्रकट हुए.
नित्यानंद appeared to clean our hearts in a gentle way.
नित्यानंद प्रकट हुए हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए एक बहुत ही सुगम तरीके से.
And simultaneously the personification of the mercy of Lord Nityananda and Srila Prabhupada, who also appeared to clean our hearts in a gentle way.
इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद जी, जो कि नित्यानंद प्रभु के कृपा की मूर्ति है, वो भी प्रकट हुए हमारे हृदय को बहुत अच्छे ढंग से साफ करने के लिए.
So one time Srila Prabhupada was doing a tour of you could say the northern part of South America, including in Venezuela, Mexico, and other cities.
तो एक बार श्री प्रभुपाद जी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में भ्रमण कर रहे थे, ये वेनेजुएला और मेक्सिको के देशों में.
So then he came finally to a city in the U.S. called Atlanta on February 28, 1975.
और ढंग से भ्रमण करते हुए वो अमेरिका के एक शहर अटलांटा में आए 28 फरवरी 1975 को.
Then Srila Prabhupada says in his arrival address in that temple in Atlanta, and you can hear the tape. It's a very emotional Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada said, "So I'm very glad to see you all, and I'm coming first from Mexico City, And then he asked, what's the other city? Caracas, Venezuela, and now I'm here.
तो अटलांटा में पहुंचते ही प्रभुपाद जी ने जो पहला प्रवचन दिया वो प्रवचन अभी भी टेप में है, उसको हम सुन सकते हैं और उसमें प्रभुपाद बहुत इमोशनल प्रकट हो रहे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं भ्रमण करके आ रहा हूँ मेक्सिको कैराकस और वेनेजुएला से और अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ.
And then Srila Prabhupada said, and after Caracas, then the devotee says, no, Prabhupada, he was in Miami. Oh yes, Prabhupada said, in Miami, and now I'm here.
तो भगवान ने बोला कैराकस के बाद प्रभुपाद फिर सब शिष्य ने बोला प्रभुपाद आप मियामी में थे कहते हाँ मियामी और उसके बाद अब मैं अटलांटा में.
And then Prabhupada tells the devotees, so I see that your temple is the best.
तो प्रभुपाद सब शिष्यों को बताते हैं और मैं देख सकता हूँ कि आपका मंदिर सर्वश्रेष्ठ है.
And the devotees all say, Jai Hari Bol.
तो सब भक्तों ने ऐसे कहा जय और हरि बोल.
सो देन श्रील प्रभुपाद सेज, सो श्री चैतन्य महाप्रभु इज वेरी काइंड परम करुणा.
तो महाप्रभुपाद जी ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं परम करुणा.
बहुत दुई जन टू लॉर्ड्स
ये दोनों भगवान
नित्याय he says at that time because the deity's name नित्याय गौर चंद्र.
नित्याय गौर चंद्र दो भगवान.
And then Prabhupada says नित्यानंद प्रभु and श्री चैतन्य महाप्रभु.
नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु.
And then he said they are very kind and then he points to them, just see they are very kind.
कह रहे ये बहुत दयालु हैं जरा देखो कितने दयालु हैं.
And they have appeared in this age to reclaim the fallen souls of this age.
और वो इस युग में प्रकट हुए हैं इस युग के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए.
Then he looks at Nitai, Gaurachandra, and he said, so they are more kind than Krishna.
फिर प्रभुपाद निताय गौरचंद्र के विग्रह की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो देखिए वो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है.
Then Srila Prabhupada in his consciousness realizes undermining Krishna. Then he says, Krishna, he is also kind.
तो प्रभुपाद को अपनी चेतना में ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो कृष्ण को कम बता रहे हैं तो बोला हाँ कृष्ण भी बड़े दयालु हैं.
And Krishna, he comes to deliver.
कृष्ण भी आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए.
But Krishna, he first of all demands you surrender Sarvadhaman Parijagya.
नहीं कृष्ण पहले आके कृष्ण ये कहते हैं कि पहले आप मेरी शरण में आओ सब धर्मों को त्याग के.
But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he does not demand any surrender.
लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं ऐसी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते उनके कोई मांग नहीं है कि आप पहले शरणागत हो.
He is so kind.
वो इतने दयालु हैं.
And then Srila Prabhupada's voice becomes choked up, cannot speak clearly.
तो फिर Srila Prabhupada जी का जो गला था वो रुद्रुत हो गया.
And he just says, so take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and be happy.
और फिर प्रभुपाद ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लें और प्रसन्न रहें.
And then Srila Prabhupada says in the end, thank you very much. And he began weeping. Weeping means crying himself.
और इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभुपाद वहीं बैठे जोर जोर से रोने लगे.
So all of you, after the class, you should go and hear this tape.
तो महाराज बता रहे कि आप
very short should hear this arrival address, Atlanta, February 28th, 1975. Hear the tape, you will feel something.
तो आप सब जा सकते हैं इस प्रवचन के बाद और अटलांटा में जो प्रभुपाद का एड्रेस होगा 28 फरवरी 1975 का इस टेप को आप सब सुनिए आप महसूस कर सकते हैं प्रभुपाद जी के इमोशंस.
You will feel the intimate relationship of Srila Prabhupada with Nitai Gaurachandra.
तो आप अनुभव कर पाएंगे श्री प्रभुपाद जी का कितना गहरा संबंध है नेताई गौरचंद जी के साथ.
इट्स द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट नॉट फिलोसफी.
ये तो हृदय की भाषा है, ये कोई सिद्धांत नहीं है.
So now we'll discuss the internal reason of why Lord Nityananda appeared.
तो अब हम चर्चा करेंगे आंतरिक कारण कि नित्यानंद भगवान क्यों प्रकट हुए.
Although we know that Lord Nityananda appeared in Ekachakrangram, but there's another reason why he appeared.
हालांकि हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु का प्रकट एक चक्रधाम में हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंतरंग कारण भी हैं उनके प्रकट होने के.
So Krishna Krishna Das Kaviraj Goswami tells us in the glories of Nityananda Balaram, it's an Adi Lila, chapter 5, text number 150.
So Krishna Das Kaviraj ji, Chaitanya Charitamrita mein, चैतन्य चैतन्य की आदि लीला के पांचवें अध्याय के 150वें प्रयाग में नित्यानंद प्रभु के गुणगान में बताते हैं.
So the verse is, रामेर चरित्र सबा दुखेरा कराना स्वतंत्र लीलाया दुख साहेना लक्ष्मणा. Translation: the activities of Lord Rama were full of suffering, but Lakshmana of his own accord tolerated that suffering.
इसका अनुवाद है, भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया.
Text 151. निषेध करिते नरे यतय छोट भाई मौन डरी रहे लक्ष्मणा मन दुख पाई. Translation: as a younger brother, he, that's Lakshman, could not stop Lord Rama from his resolution, and so he remained silent, although unhappy in his mind.
अनुवाद: छोटे भाई के रूप में वे यानी कि लक्ष्मण भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, अतः वे मौन रहे, भले ही मन वे दुखी थे.
Text 152. Krishna avatare jaista aila sevara karana Krishna ke karaila nana sukha ashvadana. When Lord Krishna appeared, he, Balaram, became his elder brother to serve him to his heart's content and to make him enjoy all sorts of happiness.
प्रयास संख्या 152 का अनुवाद: जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनकी मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने.
Then we go to text number 156. श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम. लॉर्ड चैतन्य इज द सेम लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड नित्यानंद इज लॉर्ड बलराम. लॉर्ड नित्यानंद फुलफिल्स ऑल ऑफ लॉर्ड चैतन्यस डिजायर्स.
प्रयास संख्या 156 का अनुवाद: भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है. भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.
टेक्स्ट 157. नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार एक कान स्पर्शी मात्रा सही कृपा ठानहार. The ocean of Lord Nityananda's glories is infinite and unfathomable. Only by His mercy can I touch even a drop of it.
प्रयास संख्या 157 का अनुवाद: भगवान नित्यानंद की महिमाओं का सागर अनंत और अगाध है, केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ.
So as we are aware, that Lakshman was the constant attendant of Lord Ramachandra.
जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्मण हमेशा भगवान रामचंद्र के साथ रहते थे.
Lakshman used to rise earlier than Lord Ramachandra to make him rise in the morning.
जो लक्ष्मण हैं वो भगवान राम से पहले उठ जाया करते थे ताकि वो भगवान को उठा सके.
And Lakshman used to put Ramachandra into bed and then he will take rest.
और लक्ष्मण भगवान रामचंद्र को सुलाकर फिर वो खुद सोने जाते थे.
But all this changed when Sita came into the picture.
लेकिन सब कुछ बदल गया जब सीता मैया आई.
Because after the marriage, Sita used to rise earlier and wake up Lord Ramachandra. And then at the end of the evening, Sita used to put Ramachandra to rest and then she takes rest. So she took the service of Lakshman and he was not happy.
विवाह के बाद सीता मैया ने यह सेवा ली. वो राम जी से पहले उठती थी और उनको उठाती थी और सायंकाल में राम जी को सुलाने के बाद ही वो विश्राम करने जाते थे और लक्ष्मण जी की सेवा उन्होंने ले ली और इससे लक्ष्मण जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे.
But he never expressed his unhappiness and suffering condition because Sita is senior to him and Ramachandra is his elder brother. He never expressed it.
लेकिन लक्ष्मण जी ने अपना ये रोष कभी प्रकट नहीं किया क्योंकि जो सीता जी हैं उनसे वरिष्ठ हैं और राम जी भी उनसे ज्येष्ठ हैं.
So then, you know, when you know Maharaj Dasarath, you know, fulfilled the two wishes of Kaikeya, immediately Lakshman heard about it. That you know, my elder brother Ram has to go to forest. So he went to Lord Ramachandra. I am coming with you.
तो जैसे ही दशरथ ने कैकेयी की दो इच्छाओं को पूरा किया और लक्ष्मण ने जैसे इसको सुना तुरंत वो राम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ चलूंगा.
So he saw the chance because Ramachandra won't take Sita to forest, too dangerous. I'm going. Get my service again.
तो लक्ष्मण जी को लगा ये बहुत सुंदर अवसर है. भगवान राम वन में जा रहे हैं तो सीता मैया के साथ में जाएंगे नहीं तो मेरे को सेवा दोबारा से वापस मिल गई तो बोले मैं आपके साथ जाऊंगा.
But prior to coming to Lord Ramachandra with this request, he sorted out and arranged nicely with Urmila. You know Urmila? Yes, his wife. So he said, "Now I have to go. You have to stay here and you take care of Sita. You give a nice, you know, association because she feels separation from Ram." So he planned all that out. So when Ramachandra asked him, "What about Urmila?" "No, sorted, sorted."
और राम जी के पास जाने से पहले ही लक्ष्मण जी ने अपने भाई उर्मिला से बात कर ली थी कि देखो मुझे जाना पड़ेगा और तुम यहीं पे रहो और जो सीता जी को सांत्वना देना क्योंकि सीता जी को बहुत दुख होगा विरह होगा राम जी का तो आप उनकी सेवा करना और मैं राम जी के साथ जा रहा हूँ. तो जब राम जी को उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ तो राम ने पूछा कि क्या आपने उर्मिला का क्या होगा तो लक्ष्मण जी ने उनको आश्वस्त किया कि उनसे बात हो गई है सब सेटल हो गया.
What about our mothers, Kausalya and so forth? How will they feel? Now that is also sorted because you can't go alone and I have to come. They will say yes, go with him, you can't go alone. That's sorted.
तो फिर रामी ने पूछा लेकिन हमारी माताओं को क्या होगा कौशल्या का सुमित्रा का. तो लक्ष्मण जी बोला उनको भी हम संभाल लेंगे क्योंकि जब उनको मालूम चलेगा कि आप वन में जा रहे हैं तो आपको अकेले तो जाने नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो मुझे कहेंगे हाँ हाँ आप इनके साथ जाइए.
Then Sita comes.
और फिर सीता जी आती हैं.
And when Sita enters to speak to her pati, Ramachandra, automatically Lakshman has to leave the room.
तो फिर जब सीता जी
आती हैं,
तो जैसे ही सीता जी प्रवेश करती हैं कि अपने पति से मिलने के लिए, तो जैसे ही सीता जी प्रवेश करती हैं लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से सदाचार है।
So Sita knew that Ramachandra will not take her to the forest. He knew, she knew that. Yeah. So she sat Ramachandra down with no emotion, no feeling, and she became highly philosophical.
तो सीता जी जानती थी कि राम जी उनको अपने साथ वन में नहीं ले जाएंगे, तो उन्होंने पहले राम जी को बैठाया और उनसे बातचीत शुरू की बिना किसी अपने आप को इमोशनल दिखाए या कोई फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से सिद्धांतिक बात की।
So she said, husband and wife are one soul in two bodies, inseparable.
तो सीता जी ने कहा पति और पत्नी एक आत्मा है और दो देह हैं, ये कभी आपस में अलग नहीं हो सकते।
And this has been taught to me by my own father, the great Janak is a Mahajan. We have to follow.
और ये जो बात बताई है मुझे मेरे पिता बड़े महान जो जनक राजा हैं, जो कि स्वयं महाजन हैं, उन्होंने बताई।
So Sita gave no choice to Lord Ramachandra.
तो सीता जी ने भगवान राम को कोई भी विकल्प नहीं दिया।
So then Ramachandra told Sita, you know Lakshman is also coming. Yes, that's all right.
तो राम जी ने सीता जी को बताया आप जानते हो लक्ष्मण भी आ रहे हैं, तो सीता जी कहा ठीक है वो भी ठीक है।
Because you know I can't go and get things from the forest like fruits and berries and roots. Let him do that and he can bring to me and I will cook for you and serve you.
तो बोले ठीक है उनकी भी आवश्यकता है क्योंकि मैं तो जंगल में नहीं जा सकती, कुछ कंद मूल इत्यादि को लाना है, तो लक्ष्मण जाएगा वन में वो सब लेके आएगा मुझे देगा, मैं आपके लिए उसको बनाकर आपको आपकी सेवा करूंगी।
So Lakshman heard about this and he was internally, you know, suffering. Now again she interfered. I thought, no, I can be a constant attendant. They can. Now again she has interfered.
So Lakshman जब ये सुना तो आंतरिक रूप से उनको बहुत दुख हुआ। बोले एक बार फिर से ये आ गई और मुझे सेवा का मौका नहीं मिल रहा।
So like this, so many instances are there in Ramayana. So many instances are there in Ramayana.
इस तरह से ऐसे कितने ही प्रसंग हैं रामायण में।
So at the end, when Ravana was killed by Lord Ramachandra, so then Hanuman came with the news, I can take you to Sita.
तो जब रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया तो फिर हनुमान जी इस समाचार के साथ आए कि मैं आपको सीता जी के साथ पास ले जाता हूँ।
So Lord Ramachandra told Hanuman, don't bring her to me. She was living in another man's home or palace for 4 months. She's contaminated. She's unchaste. I cannot accept.
तो फिर हनुमान जी को राम जी ने कहा नहीं, उनको आप मेरे पास लेके मत आइए। 4 महीने तक वह दूसरे पुरुष के घर में थी और पूर्ण रूप से दूषित हो चुकी है, मैं वो उनको मेरे पास मत लेके आई है।
And I come from the Raghu dynasty. We uphold dharma even to the extent of not taking into consideration our own family members. We have to follow dharma. What will people think of the Raghu dynasty? They don't follow dharma. So you go back and you tell Sita, I don't accept her. What to speak of, not even one night. One night we don't accept. This is 4 months. Can't accept.
तो राम जी ने कहा कि मैं रघु कुल से हूँ और रघु कुल पूर्ण रूप से धर्म का पालन करता है और धर्म के पालन के लिए अगर परिवार के सदस्यों की भी अवहेलना करनी पड़े तो हम अवहेलना करेंगे, तो मैं सीता जी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एक रात की बात क्या है, मतलब 4 महीने दूसरे के घर में रहे।
So Hanuman froze. He couldn't go back.
तो ये सुनकर हनुमान जी बिल्कुल हैरान हो गए, चकित हो गए, वो वापस नहीं जा पाए।
So Ramachandra asked him, what is the problem? You followed all my orders till now. Why are you not going?
तो जब हनुमान जी को वहां देखा तो भगवान राम ने बोला, क्या समस्या है भाई, अभी तक तुम मेरे सारे आदेशों का पालन करते रहे, अब आप वहां क्यों नहीं जा रहे?
And Hanuman knows everything. He knows all Shastra. You know this, right? Yeah. Even Vedas personified cannot stand in front of him. He knows everything.
और हनुमान जी सब कुछ जानते हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, यहाँ तक कि जो वेद अपने व्यक्तिगत रूप में भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते।
So Ramachandra said, "Oh, you want to get philosophical stuff?"
अच्छा आप मेरे से विवाद करना चाहते हैं सिद्धांत के ऊपर, बोलो।
So Hanuman, in a very humble way, not instructing God Ramachandra, he said, "I came here before you. I flew here. I built this whole place. I did so much seva for you. Just because to get Sita back to you. Why now? Why is this?"
तो हनुमान जी ने बहुत विनम्रता से कहा, ऐसा नहीं कि वो राम जी को आदेश दे रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं आपसे पहले यहाँ पे आया, उड़ के आया यहाँ पे, और मैं पूरे के पूरे स्थान को मैंने भ्रमण किया, किस लिए? सीता मैया को आपके पास लाने के लिए, मैंने आपके लिए इतनी सेवा की और अब ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
So Lord Ramachandra replied to Hanuman, "Okay, you don't want to tell, I don't accept." Hanuman said, "Yes, I cannot be the bearer of bad news. I want to take a good news. This is the end. So you please tell me what to do."
तो राम जी ने हनुमान को उत्तर दिया, अच्छा तो तुम सीता जी के पास ये जाके उसको नहीं बताना चाहते कि मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान ने बोला, हाँ मैं कोई संदेशवाहक नहीं बनना चाहता एक बुरी खबर का, मैं अच्छे समाचार लेके उनके पास जाना चाहता हूँ, तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ।
Meanwhile, Lakshman is happy. At last, you know, he got to get, you know, he doesn't accept it. This is good for me. He's happy.
और बीच में लक्ष्मण जी को मालूम चला तो लक्ष्मण जी अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे थे, चलो ठीक है अब मुझे फिर से सेवा का एक मौका मिलेगा।
So Ramachandra told Hanuman, "Okay, you don't tell her." Then he says, "Who will tell her that you don't accept?" He said, "I will. You can tell her that Ram is waiting. Bring him come."
तो राम जी ने हनुमान से कहा, अच्छा ठीक है तुम मत बताना उसको, तुम जाओ उनको लेकर आओ, फिर मैं उनको स्वयं बताऊंगा।
So Hanuman went to Sita and say, "Your pati is waiting for you." But Sita saw his face. तो something wrong? No. What should I do? Should I dress up properly? Because I am eager to see. I am not going to dress. I am going to go as I am. Okay, you come as you are. Anything wrong? No. Come.
तो जब हनुमान जी सीता के पास गए कि आपको बुला रहे हैं राम, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सीता मैया उनके चेहरे को देखकर समझ गए और उन्होंने बोला, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? हनुमान जी बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो। तो सीता जी ने पूछा, क्या मुझे कुछ सजना संवरना है? नहीं ऐसे ही चलो।
So Sita came and she was about to go forward and touch Lord Ramachandra's feet. And he told her, "Stop!"
तो सीता जी वहां पर गई और जैसे ही आगे बढ़ रही थी राम जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए, राम जी ने तुरंत उनको रोक दिया कि अब रुक जाइए।
And she was completely bewildered. So Ramachandra explained, "I appeared to uphold Dharma as a Rajarishi, not to rescue you. You can stay here with Vibhishan, not me."
तो राम जी ने कहा कि मैं प्रकट हुआ हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, आपको बचाने के लिए नहीं, आप यही रह सकती हैं विभीषण के साथ।
But Sita is all knowing, she knows what is happening. So she goes to Lakshman. Lakshman wondering, what? Yeah. And because Lakshman all the time, he listens to the instructions and orders of two people, Ramachandra and Sita. Okay. So she goes to Lakshman.
So Sita ji, ye sunke bahut jyada vismit ho gayi thi. तो सीता जी फिर लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि सीता जी मेरे पास क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी केवल दो ही लोगों की बात मानते थे, राम जी की और सीता जी की।
So Lakshman is not looking at Sita, he is looking at Rama, Ramachandra. Ram said, do it, you know, like in the motion of his head, do as she wants.
तो सीता जी लक्ष्मण जी के पास आई हैं और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आंखों आंखों में क्या करना है, सीता जी मेरे पास क्यों आ गई हैं, और राम जी भी कोई इशारा कर रहे हैं करो जैसा ये कहती है वैसा करो।
So Sita instructed Lord Lakshman, make and light fire.
तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि इसी समय यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करो।
Lakshman, he was bewildered. I can't do that. I'll be responsible for your death. No.
तो लक्ष्मण जी बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी मृत्यु का जिम्मेवार नहीं बनना चाहता।
Then Sita reminded Lakshman, you remember Lakshman Rekha? You made circle, it became fiery. You made fire.
तो सीता जी ने फिर लक्ष्मण को याद दिलाया, तुम्हें याद है कि तुमने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, वो लक्ष्मण रेखा भी पूरी अग्नि में हो गई थी, इसलिए दोबारा से यहाँ अग्नि प्रज्वलित करो।
So Lakshman took out that Agni Astra, the same Agni Astra that he made that called Lakshman Rekha, that second. He took out the same Agni Astra. And while he's meditating on the Agni Astra, the arrow to shoot on the ground to make the fire, he took a vow.
तो लक्ष्मण जी ने वही अग्नि अस्त्र निकाला और जिससे कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई थी और उस अग्नि अस्त्र को अपने मस्तिष्क पर रख के जब वो ध्यान लगा रहे थे तो तभी उन्होंने एक संकल्प लिया।
He took a vow that this is the last order that I will accept on Lord Ramachandra and Sita. Next time when I appear, I'm going to become older brother.
तो उन्होंने संकल्प लिया, ये आखिरी अवसर है जब मैं राम और सीता जी की आज्ञा का पालन करूंगा। अगली बार जब मैं प्रकट होऊंगा तो निश्चित रूप से मैं बड़ा भाई बनके प्रकट होऊंगा।
And I don't need to listen to them if I'm elder brother, both of them. I will tell them what to do.
तो जब मैं बड़ा भाई बनूंगा फिर मैं इनको बताऊंगा क्या करना चाहिए, मैं इनको आदेश दूंगा।
So he lit the fire, Sita entered the fire. That was Chaya Sita or Maya Sita, wasn't real Sita. Entered the fire. The Maya Sita was burnt, and from Agni there is a bow, it's a Chaitanya Charitamrita, a real Sita came on the lap of Swaha. Swaha is the consort of Agni.
तो जो ये सीता थी ये माया सीता है, छाया सीता है। तो जैसे माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो चैतन्य चैतन्य में वर्णन आया कि तभी अग्निदेव के लोक से स्वाहा जो कि अग्निदेव की भार्या है उनकी गोद में असली सीता बैठकर आ रही है।
So the Maya Sita was burnt and the real Sita came out.
और जो माया सीता है वो अग्नि में चली गई और जो वास्तविक सीता थी वो प्रकट हुई।
And Lakshman was very happy.
और लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए।
That she didn't die, he wasn't responsible for her death.
कि वो मरी नहीं, वो उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेवार नहीं बने।
But in the next moment, the suffering came again. She's back.
लेकिन अगले क्षण उनके हृदय में वही पीड़ा उत्पन्न हुई कि ये दोबारा से आ गई।
And he remembered his sankalpa.
और उनको अपने वो संकल्प याद आया।
Yeah. And the last one, which really broke him, was that when Sita was banished to the forest, he had to take Sita.
Oh,
it was too much for him.
और अंत में एक बार फिर जब उनका हृदय पूर्ण रूप से टूट गया था कि जब सीता जी को बाहर निकाल दिया गया था, वो सीता जी को ले गए थे राज महल से वन में छोड़ने के लिए।
So therefore, the next appearance, as we know and given here in these verses in Chaitanya Charitamrita, Lakshman appeared as Lord Balaram.
तो इसलिए
रामचंद्र appeared as Lord Krishna.
तो इसलिए आपने
Sita appeared as Radharani.
तो इसीलिए जैसे कि यहाँ चैतन्य चरितमृत में लिखा है अगले अवतार में रामचंद्र प्रकट हुए कृष्ण के रूप में, लक्ष्मण प्रकट हुए बलराम के रूप में और सीता प्रकट हुई राधा रानी के रूप में.
सो दैट लक्ष्मण वुड रामचंद्र एंड सीता यूज्ड टू गेट सो मच सर्विस देन बट नाउ व्हेन ही बिकेम लॉर्ड बलराम इज द बिगर प्रॉब्लम केम. He doesn't get any service because he's younger.
जो लक्ष्मण जो कि पहले राम और सीता की उनको सेवा मिल जाती थी क्योंकि वो छोटे थे, लेकिन अब समस्या और बढ़ गई. बलराम के रूप में उनको सेवा ही नहीं मिलती थी क्योंकि वो बड़े थे.
So therefore, as Balaram, he felt, what did I do? You know, I was so selfish that I had so much service as Lakshman. Now as Lord Balaram, they took all the service away from me because I am elder brother and I cannot serve. So that means my selfish sankalpa is making me suffer even more.
तो बलराम जी सोच लगे कि मैं कितना स्वार्थी हूँ क्योंकि मैं बड़े भाई के रूप में प्रकट हुआ तो मेरी सारी सेवा छिन गई और मुझे अब कोई सेवा नहीं मिलती. तो मेरे स्वार्थी संकल्प से मेरी सारी सेवा मुझसे छिन गई.
I cannot even serve Srimati Radharani.
मैं राधा रानी जी की भी सेवा नहीं कर सकता.
So he became very depressed.
तो इससे वो बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत उदास हो गए.
Can't sleep.
और वो उनको निद्रा भी नहीं आती थी.
Constantly in anxiety.
हमेशा चिंता में रहते थे.
Yeah. So from this not sleeping and depression and constant anxiety, one form came out. Which is a partial feature of Balaram.
तो इस जंग से हमेशा चिंता में रहना, बिल्कुल सोना नहीं और उदास रहना, इस भाव से उनका एक आंशिक रूप प्रकट हुआ, जो कि बलराम जी का एक आंशिक रूप है.
Because Krishna will never accept service from Balaram.
क्योंकि कृष्ण है, वो कभी बलराम से सेवा स्वीकार नहीं करेंगे.
Even Balaram asks him, give me some service. No.
और जब बलराम जी कहेंगे कि आप मुझे कुछ सेवा दें तो कृष्ण कहेंगे नहीं.
You my older brother.
आप मेरे बड़े भाई हैं.
I can serve you.
मैं आपकी सेवा कर सकता
हूँ. And he refuses to accept service from Krishna. So both ways he is losing.
और फिर वो कृष्ण से सेवा भी स्वीकार नहीं करते. तो दोनों ही तरीके से उनका नुकसान हो रहा था.
So in that depression state, transcendental depression.
तो उस दिव्य उदासी में जो दिव्य डिप्रेशन था उसमें
It's full of juice. It's full of rasa.
तो
this type of trance, it's very wonderful thing.
और जो दिव्य डिप्रेशन है, ये पूर्ण रूप से आनंदमय है, रसपूर्ण है.
A form of a very young gopi, not more than 5 years of age, appeared.
तो इसी दिव्य डिप्रेशन के रूप के भाव में एक बहुत ही युवक गोपी प्रकट हुई. उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं होगी.
The 5 years girl is always naturally pure and innocent.
जो 5 साल की बालिका होती है वो प्राकृतिक रूप से बहुत शुद्ध होती है और बहुत मासूम होती है.
And by association of such a girl, you won't even get agitated by the mind and senses. That purity is there.
और ऐसी अवस्था में ऐसी बालिका का संग करके हम अपने मन में विचलित भी नहीं होंगे, उत्तेजित भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बहुत शुद्धता है.
So the consciousness of that form of that manjari gopi is the longingness to serve Srimati Radharani.
तो वो जो छोटी गोपी है, गोपी मंजरी की जो चेतना है उसमें है उसकी तीव्र इच्छा कि कैसे मैं राधा रानी की सेवा करूं.
Anyone knows her name?
कोई जानता है उनका नाम?
Ananga. Anga means limb. Yes. So Ananga means coming from somebody's limb. Ananda Manjari. So Ananda Manjari is a partial form of Anda, you know, of Lord Balaram.
So उनका नाम है Ananda Manjari. Ananga, Ananga का अर्थ है अंग, जो किसी के अंग से प्रकट हुई हैं, और वो बलराम जी के अंग से उनका ये आंशिक प्रकट्य है.
So Balaram became 50% cured of his depression.
तो अनंत मंजरी के प्रकट के बाद जो बलराम जी हैं 50% उनका जो डिप्रेशन था
स्टिल
उसका कम हो गया.
He was depressed but not fully depressed because when Ananda Manjari serves Radharani, he feels some internal satisfaction, pushti, you know, like nutrition and satisfaction. He cannot directly serve Radharani but through Ananda Manjari he feels something.
तो जब अनंत मंजरी राधारानी की सेवा करती है तो बलराम जी को आंतरिक रूप से तुष्टि और पुष्टि का अनुभव होता है. फिर भी उनका जो डिप्रेशन था पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब जब अनंत मंजरी सेवा करती थी उनको तुष्टि और पुष्टि का अनुभव होता था.
Then sometimes Balaram, with that eagerness to serve Krishna, he makes a plan.
तो कई बार बलराम जी अपने इस उत्सुकता में कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है तो वो योजनाएं बनाते हैं.
So when they in the fields playing, sometimes they rest the cowherd boys.
तो जब वो खेलने जाते थे तो खेलते खेलते कई बार ऐसे भी ग्वाल बाल विश्राम करते थे.
So Krishna would put his transcendental head onto the lap of say Sridhar.
तो कृष्ण क्या करते थे, अपना जो उनका दिव्य चेहरा था, सिर था, वो श्रीदाम की गोद में डालते थे.
Because Sridham is the brother of Srimati Radharani. So when he is with Sridham, he also feels Radharani's presence. क्योंकि you know how like you know if you were the younger brother of another girl, so when you're the brother, you feel the consciousness of the girl. It's like that.
तो श्रीधाम जो है वो राधा रानी के भाई हैं, तो जब श्री कृष्ण अपना मुख श्रीधाम के गोद में रखते थे तो ऐसा करने से उनको राधा रानी की उपस्थिति का भी अनुभव होता था. जैसा कि हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से हम उसका संग करते हैं तो हम उसके बड़ी बहन का भी संग का अनुभव कर सकते हैं.
So from Sakya Bhavan, with his head on Sridham's lap, from Sakya Bhav internally it goes into Madhurya Bhav.
So Krishna,
nobody knows, only Krishna knows. He is with Radharani internally.
तो कृष्ण अपने सिर को जब श्रीधाम की गोद में रखते हैं तो हालांकि ये साख्य भाव है, लेकिन साख्य भाव के साथ साथ हृदय में कृष्ण माधुर्य भाव का भी आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से वो श्रीमती राधारानी के साथ हैं. ये और कोई नहीं जानता, केवल कृष्ण ही जानते हैं.
So that time, Subal or Stoka Krishna, they come and massage Krishna's feet. But Krishna doesn't know he's being massaged because he's in his internal bath.
So उस समय Subal or Stoka Krishna भी आते हैं और कृष्ण के चरणों का मसाज करना शुरू, पॉलिश करना शुरू करते हैं. लेकिन कृष्ण को उसका अनुभव ही नहीं होता क्योंकि कृष्ण पूर्ण रूप से राधा रानी के भाव में है.
Then Balaram notices this. And Balaram knows Krishna is unaware who is massaging his feet.
So Balaram is the part ko dekh rahe the ki Krishna ko is samay pata hi nahi ki kaun unke charnon ki seva kar raha hai.
So Balaram comes to Subal and he places his lotus palm on Subal's palm while Subal is massaging Krishna's feet.
तो बलराम आते हैं और सुबल के पास, और सुबल के चरण कमलों के ऊपर भगवान अपने चरण कमल, अपने हस्त कमल रखते हैं, और जिस ढंग से सुबल अपने हाथों से कृष्ण के पांवों की मसाज कर रहे हैं और उसके उन्हीं हाथों के ऊपर बलराम जी अपने हाथ रख लेते हैं.
And then slowly he tells Subal, now transfer my arm away from your arm, so Krishna will not know that the massage has changed hands.
और वो सुबल को बोलते हैं कि धीरे 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 अपने हाथ आप नीचे से खिसका लीजिए ताकि कृष्ण को ये पता ना चले कि आप जो उनके चरणों की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति बदल गया है.
So when Balaram begins fully now massaging Krishna's lotus feet, at that time Ananga Manjari gets a feeling that she has to go to Srimati Radharani.
तो जब बलराम जी पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में सेवा में लगे हुए हैं तब अनंग बंजरी को ये महसूस होता है कि उससे अब श्रीमती राधा रानी की सेवा में जाना है
But meanwhile, श्रीमती राधा रानी is in the consciousness of Krishna on with his head on the lap of Sridhar
और हालांकि अनंग बंजरी को लग रहा है कि मुझे राधा रानी की सेवा में जाना है लेकिन जो राधा रानी है उस समय कृष्ण की चेतना में है क्योंकि कृष्ण ने अपने सर को श्रीराम की गोद में रखा हुआ है
सो व्हेन अनंग मंजरी कम्स एंड राधारानी सीज शी स्टार्ट्स मसाजिंग राधारानीज फीट
तो जब अनंग मंजरी आती है और राधारानी अनंग मंजरी को देखती है तो अनंग मंजरी राधारानी के चरणों को मसाज करना शुरू कर देती है
So in that way, Balaram is massaging Krishna's feet and simultaneously in his expansion, massaging Radhana's feet. At that time, Krishna gets up.
और एक तरीके से देखें यहाँ पे बलराम जी कृष्ण के चरणों के मसाज कर रहे हैं और अपने आंशिक प्रकट्य के रूप में अनंग मंजरी राधारानी की सेवा कर रहे हैं तो बलराम जी दोनों की सेवा कर रहे हैं तब उसी समय कृष्ण अपने चेतना में वापस आते हैं
Because Radharani has left the consciousness of Krishna and his one Ananga Manjari.
क्योंकि राधारानी ने अब कृष्ण की चेतना को खो दिया अब वो राधारानी अनंग मंजरी के साथ है
So Krishna gets up, oh, where have you gone? So, you know, Sridhar asks, who has gone where? Oh.
तो कृष्ण एकदम उठते हैं और बोलते हैं कहाँ चले गए तुम तो श्रीधर पूछते हैं कौन कौन चला गया
Then Krishna comes, you know, back to this other consciousness, being with the boys. By that time, Balaram has brought Subha. You continue massaging. I am going now.
So Krishna जब अपनी बाहरी चेतना में आ जाते हैं,
it happens very quickly, very
fast. बाहरी चेतना में आ जाते हैं, वो देखते हैं कि वो ग्वाल बालों के साथ हैं. उसी समय तुरंत बलराम अपने को पीछे करते हैं और सुबल को कहते हैं, अब तुम वापस सेवा में आ जाओ. तो ये सब बहुत जल्दी में होते हैं
बिकॉज बलराम हैज दैट कॉन्शियसनेस ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब कृष्णा इन एनी वे ही इज माय यंगर ब्रदर ही डजंट वांट टू गिव हिम एनी ग्रीफ इट्स लाइक इफ कृष्णा नोज दैट बलराम वाज मसाजिंग हिम ही बिकम एंग्री नो ही बिकम एंग्री मींस इज नॉट हैप्पी सो आई डोंट वांट टू मेक हिम अनहैप्पी बट एट द सेम टाइम माय हैप्पीनेस इज टू मसाज हिज फीट सो इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ द सिचुएशन
तो बलराम जी कृष्ण की इतनी सेवा करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कृष्ण को किसी भी ढंग से वो दुख दे क्योंकि अगर कृष्ण को मालूम चलेगा कि बलराम जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण जी को क्रोध आ जाएगा क्रोध आएगा इसका अर्थ है कि वो प्रसन्न नहीं है तो इसलिए वो उनको ये महसूस नहीं कराना चाहते लेकिन साथ ही साथ में बलराम जी कृष्ण की सेवा भी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक पिक्यूलियर सिचुएशन है स्थिति है
सो बलराम गोज अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कावर्ड बॉयज And he feels depressed again because he just did that service. It was short-lived. Now he's hankering. Never happens.
तो बलराम जी अपने ग्वाल बालों से दूर हो जाते हैं और फिर से उदास हो जाते हैं कि उनको सेवा मिली लेकिन वो कुछ ही क्षणों की थी और वो सेवा फिर चले गए और फिर से उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रही थी कब वो कृष्ण की सेवा करेंगे
So that desire of Balaram becomes more and more known to Krishna.
तो बलराम की जो तीव्र इच्छा है ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को भी मालूम चलना शुरू होती है कि बलराम ऐसी सेवा करना चाहते हैं
एंड देन कृष्ण बिकम्स डिप्रेस्ड दैट ही कैन नॉट फुलफिल द डिजायर ऑफ बलराम टू सर्व हिम
तो बलराम जी की इच्छा को जानकर कृष्ण जी उदास हो जाते हैं कि वो बलराम की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे
एंड देन ही हैज अ कन्वर्सेशन विद श्रीमती राधारानी यू नो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ व्हाट टू डू
तो फिर वो राधा रानी जी से बातचीत करते हैं कि अब ये समस्या इसका क्या समाधान है
Then, but Krishna also knows that Radharani knows how to serve Krishna the best.
और कृष्ण ये भी जानते हैं कि राधा रानी जानती है कि कृष्ण की सेवा सबसे अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं
And just to shorten the leela is that eventually Radharani tells Krishna, you know, what if you are not Krishna, then it will work.
तो इस लीला को संक्षेप में करने के लिए राधा रानी जी कृष्ण को बताते हैं अगर ऐसा हो जाए कि आप कृष्ण ना रहे तो फिर कैसा रहेगा?
And then immediately Radharani checked this up. In other words, you know, in a very casual way, she said, what if you are not Krishna? Then it will work. Then she realized, no, please, I withdraw my statement. I don't want that. Because, you know, if there's no Krishna, she's also finished. But she said it. She said it.
तो जैसे ही राधा रानी जी ने कहा कि अगर आप कृष्ण ना रहे तो शायद काम चल जाए, लेकिन कहते ही राधा रानी को लगा ये मैंने क्या कह दिया, क्योंकि अगर कृष्ण नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो कहते नहीं नहीं, उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन वो बात कह चुकी थी।
Then Krishna said, ah, that's the solution. If I'm not Krishna, no, please, I don't know why I said it, but you know, you're always Krishna, so you cannot become not Krishna. You know, hey, please, you know, no, that's the solution.
So, Krishna said, हाँ, ये तो बहुत अच्छा समाधान है। तो राधा रानी कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। कृष्ण आप कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण आप ना कृष्ण रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, कृष्ण बोले नहीं, ये तो बहुत अच्छा समाधान है।
Then Krishna says, so be it.
तो कृष्ण बोला ऐसा ही हो।
कृष्ण वर्णन ट्विश आ कृष्ण। संगोपंग संकीर्तन प्राय जंती सुमेरश। सो व्हेन राधारानी सेड दिस, आ कृष्ण, सो इफ यू नॉट कृष्ण, यू आर कृष्ण बट नॉट कृष्ण, कृष्ण वानम ट्विश आ कृष्ण, दैट्स हाउ दैट वर्स हैज कम अबाउट।
तो कभी भगवान ने बोला हाँ ऐसा ही हो, तो इसलिए वो आए कृष्ण वर्णन त्विषा अकृष्ण, यानी कि कृष्ण भी है और अकृष्ण भी है, जैसा कि राधा रानी ने कहा।
Then Krishna tells Radharani, if I am not Krishna, is that okay now? She says, no. But so be it. Then only Balaram can serve me.
तो कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण होकर कृष्ण ना रहूं तो ठीक है। राधा रानी बोला नहीं, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा ही हो, क्योंकि तभी बलराम मेरी सेवा कर पाएंगे।
So Balaram's depressed state of not one cannot serving Krishna enters into Krishna and Krishna becomes depressed.
तो बलराम जी की उदासी की अवस्था कि वो कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे, इससे कृष्ण की अवस्था बड़ी उदास में हो जाती है कि बलराम जी उनकी सेवा नहीं कर पा रहे।
So the depression of Balaram as well as Krishna combined enters into Srimati Radharani and she becomes doubly depressed.
Oh, तो बलराम जी का दुख, बलराम जी की उदासी और कृष्ण का दुख और उदासी, ये सब राधारानी में प्रवेश कर देती है और कृष्ण राधा रानी दुगने रूप से उदास हो जाते हैं।
And Krishna is telling, now what happened to you? I'm still here, I'm not gone, I'm not a Krishna, why are you unhappy? Why are you so depressed? No, the thought of you not being there is too much for me.
कृष्ण ने बोला कि आप अब क्यों उदास हो गई, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं कहीं गया तो नहीं। लेकिन राधा रानी ने कहा, लेकिन केवल ये विचार है कि आप नहीं हो, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा।
And she goes into an internal depression, although Krishna is there.
तो वो एक आंतरिक उदासी में चली जाती है, हालांकि कृष्ण के पास ही है।
So in the 20th chapter of the Antya Leela, the final chapter of Chaitanya Charitamrita, this verse is given that in a depressed state she speaks, Aslasya va padaratam pinashtumam adashana mamahatam karotuva yata tata va vidyato lampatu matparanatastu sa eva napara. She continues to speak this verse. This verse was originally spoken by Srimati Radharani, then repeated by Lord Chaitanya.
तो फिर अंत्य लीला के अंतिम अध्याय 20वें अध्याय में जो श्लोक आता है, जो कि शिव शास्त्र का अंतिम श्लोक है, तो ये श्लोक पहले राधा रानी ने बोला, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला।
सो राधा रानी से मामा हतम करो प्रभा, दैट यू आर किलिंग मी बाय यू नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर मी, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रेम भक्ति।
तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप मेरे को मार रहे हैं मेरे सामने उपस्थित ना होकर, ये प्रेम भक्ति की परिकाष्ठा है।
So in order to fulfill Balaram's desire to serve Krishna and to serve Srimati Radharani, and in order to relieve Balaram of his depression or distress state, Krishna absorbs that distressing state and he gives it to Radharani. And when Radharani gets into a depression, then what happens? She speaks this verse. Then Krishna becomes a Krishna and he plunges the love of Srimati Radharani and becomes Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya.
So, Sri Balaram ji ki seva karne ki ichha aur unke jo antrik jo udasi thi usko aur unki ichha thi ki woh Sri Krishna aur Radha Rani ki seva kare, और वो सेवा ना करने के कारण जो उनकी उदासी थी उसको श्री कृष्ण ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और वो जो दुख और उदासी उन्होंने श्रीमती राधा रानी को दिया, और उस दुख और उदासी में जब राधा रानी ने अंतिम श्लोक गाया तो श्री कृष्ण ने राधा रानी के इस भाव को चुराया और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए।
एंड देन दैट बालाराम सीज द चांस, ही सेज नाउ आई कैन सर्व टू माय हार्ट्स कंटेंट। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर of this chapter 5 is called The Glories of Nityananda Balaram. The word Balaram is there, or sometimes Nityananda Ram, but specifically Prabhupada says Nityananda Balaram. So that Lord Balaram becomes Nityananda Balaram or Lord Nityananda and serves the divine couple in a combined form of Lord Chaitanya to his heart's content.
तो फिर बलराम जी लगा हाँ ये अच्छा अवसर है सेवा का, तो वही बलराम जी बनते हैं नित्यानंद बलराम। इस आदि लीला के पांचवें अध्याय का नाम द ग्लोरीज नित्यानंद बलराम की महिमा है, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है, प्रभुपाद ने ऐसा इसका अनुवाद किया है। तो बलराम जी की जो इच्छा थी राधा और कृष्ण की सेवा करने की, अब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो बलराम जी ने राधा और कृष्ण की जो सेवा है पूरे हृदय से भरपूर रूप उनकी सेवा के नित्यानंद प्रभु के रूप में।
सो फ्रॉम लक्ष्मण टू बिकमिंग बालाराम टू बिकमिंग नित्यानंद बालाराम और नित्यानंद राम, दैट इज द इंटरनल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद ऑन द सस्पेंशन।
लक्ष्मण जी से, फिर बलराम जी से, और फिर नित्यानंद राय नित्यानंद बलराम, ये आंतरिक कारण है नित्यानंद प्रभु के प्रकटने का।
So we'll conclude with another Prabhupada anecdote.
तो एक बार हम इसको विराम देंगे एक फिर प्रभुपाद लीला के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद वाज स्टेइंग इन मुंबई इन द होम ऑफ कार्तिकेय महादेवी।
तो प्रभुपाद जी मुंबई में रह रहे थे एक कार्तिकेय महादेव के घर में।
Because they couldn't stay on the Juhu land, there was still fight going on.
क्योंकि वो जुहू के स्थान पे नहीं रह सकते थे, क्योंकि अभी वहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रही थी।
So when Srila Prabhupada was there, he received a telephone call from the temple president in Calcutta.
तो जब प्रभुपाद उनके घर में थे, तब उनको कलकत्ता के temple president का फोन आया।
And the temple president in Calcutta informed Srila Prabhupada that one of his oldest disciples had fallen into difficulty in India and was smoking ganja, marijuana.
तो कलकत्ता के मंदिर अध्यक्ष ने बताया कि प्रभुपाद आपके जो सबसे पुराने शिष्य हैं वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, अब वो गांजा और मरिजुआना पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं।
So Srila Prabhupada told the temple president to tell him that if he doesn't stop smoking ganja, Srila Prabhupada will reject him.
तो प्रभुपाद जी ने मंदिर के अध्यक्ष को बताया कि आप मेरे उस शिष्य को बता दीजिए कि अगर उन्होंने गांजे का नशा करना बंद नहीं किया तो प्रभुपाद जी उसको उसको तिरस्कार कर देंगे.
So while Srila Prabhupada was speaking on the phone to the temple president, Tamakrishna Maharaj heard everything.
तो इस प्रकार जब प्रभुपाद उस मंदिर अध्यक्ष से बात कर रहे थे तो तमाकृष्ण गोस्वामी महाराज ने सब कुछ सुन लिया.
So Tamakrishna Goswami asked, Srila Prabhupada, is it true that you will reject him if he doesn't stop smoking ganja?
So Tamakrishna Goswami ji ne pucha Prabhupada se, Prabhupada kya ye satya hai ki aap usko tiraskar kar denge agar usne ganja ka nasha band nahi kiya?
Then Srila Prabhupada said, no, I cannot reject anyone.
So Prabhupada ne kaha nahi, main kisi ko bhi tiraskrit nahi kar sakta.
But then Tamakrishna Goswami questioned Srila Prabhupada. And he said, but Srila Prabhupada, don't you have to draw the line somewhere? Is there not some limit to draw the line somewhere?
तो लेकिन तमाशिल गुरुजी ने कहा कि प्रभुपाद कहीं तो आप कहीं पे एक रेखा खींचेंगे, कुछ तो सीमा बांधेंगे.
Prabhupada said, no, there's no limit. The mercy of Lord Nityananda is unlimited.
प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसमें कोई सीमा नहीं है. नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो असीमित है.
So the personification of the unlimited mercy of Lord Nityananda comes in the form and the consciousness of His divine grace. He is the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
So Nityananda Prabhu ki जो असीमित कृपा की मूर्तिमान रूप और उनकी चेतना के रूप में प्रकट होते हैं परम पूजनीय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद.
Although Lord Nityananda is Adi Guru, our Adi Guru in ISKCON is Srila Prabhupada.
हालांकि नित्यानंद जी आदि गुरु हैं, लेकिन ISKCON में हमारे आदि गुरु श्रील प्रभुपाद हैं.
Who is the personification of Lord Nityananda's unlimited mercy and benediction on us all?
जो कि नित्यानंद जी की असीमित कृपा और उनके आशीर्वाद के मूर्तिमान रूप हैं.
Do you have any comments or questions?
किसी की कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न?
Thank you, Maharaj. I just like you were mentioning that the cowherd friends of Krishna, even they were not knowing what's happening when Krishna was putting his lap on the putting his head on the lap of Sridham. And how does these pastimes comes on earth and we become aware of these leelas which are so internal and confidential?
I'm trying to understand your question.
Maharaj, I heard.
You know, there's a famous BBT picture that's painted.
Yes.
You've seen it? How the Krishna's, you know, his head is on the lap of Sri Dhaman, one coward boy is massaging, and the other, Balaram actually, is massaging. So, this is that famous photo which Prabhupada described to be painted.
So, Pemajan Roga Prashna hai. कि आपने जो लीला सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर को श्री राम की गोद पे रखा और क्या चल रहा था भगवान के हृदय में ये ग्वाल बालों को भी नहीं मालूम था. तो इस मोहम लीला में जब ये लीला हुई तो जब ग्वाल बालों को नहीं मालूम तो हमें कैसे मालूम चल गया भगवान के आंतरिक भावों के बारे में.
So तो
महाराज महाराज ने बोला कि मैं आपको प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहा हूँ. और भी महाराज ने बताया कि जिस प्रकार से आपने बेबेटी की पेंटिंग को देखा होगा कि सब ग्वाल बाल हैं और कृष्ण ने अपने सर को श्रीराम के गोद में रखा हुआ है और बलराम जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं.
So, you know, I'm from, I was born, this body was born in Durban in South Africa. And two of Srila Prabhupada's leading artists, devotees who was painting. Their names are Ram Das and his wife Dhriti Devi Das.
तो प्रभुपाद ने इस लीला का चित्रण करने के लिए अपने शिष्यों को बताया तो महाराज बता रहे हैं कि मेरा ये जन्म मेरा ये शरीर साउथ अफ्रीका डरबन में पैदा हुआ और वहाँ श्रील प्रभुपाद के दो आर्टिस्ट शिष्य हैं उनका नाम है रामदास और उनकी पत्नी धृति
सो दिस पेंटिंग वाज पेंटेड इन 1985
तो ये जो पेंटिंग है ये 1985 में इसको पेंट किया गया
एंड द ओरिजिनल पेंटिंग एंड द पेंटिंग इटसेल्फ वाज डन इन साउथ अफ्रीका
और इसका जो मूल रूप से जो इस पेंटिंग को किया गया था ये साउथ अफ्रीका में इस पेंटिंग को पेंट किया गया
एट दैट टाइम रामदास प्रभु एंड हिज वाइफ ड्रिटी देवी दास वर स्टेइंग फॉर सम मंथ्स इन साउथ अफ्रीका एंड दे वर डूइंग दिस पेंटिंग
तो उस समय रामदास और उनकी पत्नी धृति देवीदासी साउथ अफ्रीका में ही रह रही थी जब वो पेंटिंग कर रही थी
एंड द ओरिजिनल पेंटिंग इज स्टिल इन द डर्बन टेंपल इन द सन्यासी रूम सो आई समटाइम्स स्टे इन द रूम एंड आई सी दिस पेंटिंग
और जो मूल पेंटिंग है ओरिजिनल पेंटिंग है वो अभी भी साउथ अफ्रीका के डर्बन के मंदिर में है जहाँ पे वो सन्यासी लोग विश्राम करते हैं तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ महाराज कह रहे हैं तो मैं उस पेंटिंग को देखता हूँ
सो द पेंटिंग हैज थ्री पार्ट्स The main painting is that Krishna's head is on Shridham's thigh, you know, lap, and Balaram is massaging Krishna's feet. And then there's two separate paintings of Subal and Stoka Krishna on the sides. It's like a separate canvas, but it's one scene.
तो ये पेंटिंग के तीन भाग हैं एक भाग में तो श्रीराम जी के गोद में भगवान ने अपना सिर रखा हुआ है और बलराम जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं और उनके दाएं और बाएं में जो कि अलग दूसरे कैनवस में इसको पेंट किया गया है उसमें सुबल और स्तोक कृष्ण खड़े हैं
सो आई आस्क्ड रामदास एंड रीति स्पेशली रामदास हाउ इज दिस सो दे वाज एक्सप्लेनिंग
तो मैंने पूछा रामदास जी से विशेषकर कि ये कैसे है तो उन्होंने बताया
एंड द डिस्क्रिप्शन इज गिवन समवेयर आई हैव टू लुक इट अप इन वन ऑफ द गोस्वामी लिटरेचर्स आल्सो
तो उन्होंने इसको विस्तार में बताया और ये पूरे के विस्तार में भी किसी ग्रंथ में दिया गया है मुझे देखना पड़ेगा महाराज कह रहे हैं निश्चित रूप से किसी गोस्वामी ग्रंथ में दिया गया है
बट दैट पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग इज देयर इन द डर्बन शिशिरारा टेंपल And when I take a rest, it's right above my head. I can see the wall. Nice meditation.
तो लेकिन जो मूल पेंटिंग है वो डरबन के मंदिर में है और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मैं विश्राम करता हूँ बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आती है बहुत अच्छा ध्यान करने का तरीका है
Other questions?
Or comments? Yeah.
What are we doing
Hare Krishna.
Okay, last question.
Thank you, Maharaj. I have a question. Nityananda Prabhu was around 20 years senior to Chaitanya Mahaprabhu. So it would be more difficult for him to serve Chaitanya Mahaprabhu now.
Senior in what sense?
Age factor is more now.
Senior in what sense?
Age.
So let me ask you a question. Is your mother here?
Maybe.
Huh?
Yes.
Where? Mataji. Yeah. Your son, huh? You see his age or you only see son?
विलाचरणपुर का प्रश्न है कि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो तो चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं 20 साल बड़े हैं तो महाराज ने पूछा बड़े मतलब तो बोला उनकी आयु 20 साल बड़ी है तो महाराज ने बोला कि आपकी माता जी हैं यहाँ पे तो माता जी हैं सामने बैठी हैं तो माता जी से प्रश्न पूछा महाराज ने कि क्या आपने जब बेटे को देखते हैं उसकी आयु को देखते हैं अपने बेटे को देखते हैं
So if on the material platform there's no age, but just consciousness, what to speak of Nityananda and Lord Chaitanya.
तो भौतिक स्तर पे भी हम आयु को नहीं देखते, केवल चेतना होती है, तो फिर क्या कहना नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु।
So Lord Nityananda, he sees, oh, Radha Krishna, I am serving.
नित्यानंद प्रभु ये देखते हैं, oh, ये राधा कृष्ण है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ।
And Lord Chaitanya sees Nityananda's service towards him as how is becoming free from his depression.
और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु देखते हैं, ओह हमें सेवा कर रहे हैं, चलो अपने दुख से तो उसको मुक्ति मिले।
एंड राधा रानी इज सेइंग, ओह आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज आई सेड यू नो यू कैन ओनली बलराम कैन ओनली सर्व यू इफ यू आर कृष्ण, इफ यू आर नॉट कृष्ण। So Balaram is being placed in the form of Lord Nityananda. So it's consciousness. It's not age.
Oh, Nitya Radharani bhi ye dekh rahi hai. Oh, chalo theek hai. Balaram ji ka udasi dur hui kyunki maine bola ki Krishna ko ki Balaram ji aapki seva tabhi kar sakte hain jab ab aap Krishna ho jaiye. To ye aap Krishna ho gaye hain, usse Balaram ki udasi kam hui. To ye pura chetna ka sawal hota hai. Isme aayu ka koi lena dena nahi.
And even if it's age and Nityananda is elder to Lord Chaitanya in age, as you are saying, even if he's elder, then he can do anything he wants, he's elder brother.
और अगर आयु में भी वो अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
An elder brother can always serve the younger brother. There's no issue.
तो जो बड़े भाई हैं वो हमेशा छोटे भाई की सेवा कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है।
सो इन दैट सेंस चैतन्य महाप्रभु इज महावदन्याय, ही इज मैग्नानिमस इवन टू लॉर्ड नित्यानंद बाय एक्सेप्टिंग सर्विस फ्रॉम हिम।
तो उस ढंग से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय हैं, वो नित्यानंद प्रभु को भी आज्ञा दे देते हैं कि वो उनकी सेवा कर सके।
बट ही गेव हिम दैट सर्विस, योर संकीर्तन पार्टनर इज हरिदास ठाकुर, go out and preach.
तो उन्होंने हमको ये सेवा दी कि जाओ आपके जो संगीतन पार्टनर हैं हरिदास ठाकुर हैं, बाहर जाओ और प्रचार करो।
And you know what happened with me?
तो आप सब जानते हैं कि जब वो हरिदास ठाकुर के साथ बाहर गए तो क्या हुआ, उन्होंने जगाई और मदाई का उद्धार किया।
So हरिदास ठाकुर was telling Nityananda, okay, Lord Chaitanya gave us service, but it's too dangerous.
महाप्रभु ने हमें यह सेवा दी है लेकिन यह बहुत खतरनाक है, जगाई और मदाई के पास जाना।
And when Nityananda used to tell Haridas Thakur, you see, jagai and madai, let's go. He'll go towards jagai and madai, Haridas Thakur go different direction.
तो जब नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बोलते देखो वो जगाई और मदाई चलते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई की तरफ जाते थे और हरिदास जी बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते थे।
So in the evening, Lord Chaitanya would call them both, Haridas Thakur and Nityananda, give report of your sankirtan activities for the day.
तो शाम काल में चैतन्य महाप्रभु दोनों को बुलाते थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, कि वे पूरे दिन भर की अपने प्रचार की रिपोर्ट दीजिए।
Now Haridas Thakur is elder to Nityananda. So he asked Haridas first, give news.
तो हरिदास ठाकुर जी ज्येष्ठ हैं नित्यानंद जी से, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते थे, आप बताइए क्या होगा प्रचार में।
So Haridas Thakur request Lord Chaitanya, can you please change my sankirtan partner? Give me somebody else to go.
हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते थे, क्या आप मेरा पार्टनर चेंज कर सकते हैं, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा।
So Lord Chaitanya asked Haridas, why? He said he is mad. He's crazy.
तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, क्यों क्यों बदलना चाहते हो अपना पार्टनर? तो हरिदास ठाकुर ने बोला, ये तो पागल है।
So Nityananda will keep quiet. Okay, I am crazy. Now you tell Lord Chaitanya, why I am crazy? You say.
तो नित्यानंद प्रभु कहते ठीक है मैं पागल हूँ, अब आप बताइए चैतन्य महाप्रभु को मैं कैसे पागल हूँ।
So Haridas Thakur, this drunkard people were so dangerous and they do all sorts of nonsense. He is becoming like them and he wants to associate with them. So he is crazy.
So Haridas Thakur कहते हैं ये जो जितने नशेड़ी में हम घूमते रहते थे बदमाश लोग, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनका संग करते हैं, ये पागल है।
So then Lord Chaitanya asked Nityananda, is this true?
तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को सुनते क्या ये सच है?
So Nityananda says, yes, it's true. The more risky the preaching, the more sweet it is.
So Nityananda बोला बिल्कुल सच है, जितना प्रचार में खतरा होगा उतना उसमें माधुर्य होगा।
So Nityananda asked Haridas Thakur, would you want madhuram, sweetness? So Lord Chaitanya, sweet. Haridas, you go back with him tomorrow.
तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी से पूछा, आप चाहते हैं प्रचार में मधुरता चाहते हैं? हरिदास ने बोला हाँ चाहता तो हूँ। तो बोले ठीक है आप नित्यानंद जी के साथ ही चलिए।
So even in Lord Chaitanya's time when there were Sankirtan partners, they disagreed.
तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी जो संकीर्तन पार्टनर्स होते थे उनमें आपस में वो डिसएग्रीमेंट होता था, मतभेद होता था।
So that's the principal service that Lord Chaitanya gave Lord Nityananda.
तो ये सबसे प्रमुख सेवा थी जो कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दी।
He used to go out and tell everyone, you know, Hari Hari, you know, bolo Hari Hari.
Hari Hari. तो ये प्रमुख सेवा थी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप बाहर जाइए और लोगों से बुलवाइए Hari Hari.
So we thank you very much for allowing me to be of some service to you for whatever it's worth. You translate exactly what I said.
तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूँ।
And we hope to be of service to you in the future again.
और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मैं आपकी सेवा कर सकूँ।
श्री नित्यानंद बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री पंचतत्व की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नताय गो प्रेमानंदे
हरि हरि बोल। भक्ति So thank you very much Maharaj for being so merciful upon us on this very auspicious day. Thank you. His Holiness Bhakti Bhagavan Swami Maharaj ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Nityanand Triyodashi Mahamahotsav ki Udai Gaur Premanande. So sabhi bhaktan ka bahut dhanyavad. Abhi yahan